नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को इंडोनेशिया के बाली के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी के विभिन्न G20 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है। अपनी आधिकारिक यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मैं कई अन्य भाग लेने वाले देशों के नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करूंगा। ये G20 शिखर सम्मेलन विशेष है क्योंकि भारत 1 दिसंबर 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति पद का हस्तांतरण बाली में शिखर सम्मेलन के दौरान होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन को पुनर्जीवित करने जैसे वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर अन्य G20 नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर के शिखर सम्मेलन के तहत वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस भुगतान सेवा से कमाई के बाद अब मुनाफे की दृष्टि से सही राह पर अग्रसर है। कंपनी के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने सोमवार को ये बात कही। शर्मा ने अक्टूबर महीने के पेटीएम के प्रदर्शन की जानकारी देते हुए शेयरधारकों को लिखे पत्र में कहा कि कंपनी देश में भारी मांग को देखते हुए ऋण देने के कारोबार को बढ़ा रही है। बंद पड़ी कंपनी माइनिंग एंड अलॉयड कॉरपोरेशन लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र की 3 इकाइयों के समूह द्वारा पटरी पर लाने की योजना ऐसा लगता है कि खटाई में पड़ गई है। अधिकारियों ने सोमवार को ये संकेत दिया। अधिकारियों ने कहा कि कोल इंडिया और दामोदर घाटी निगम के साथ समूह में शामिल BEML ने पुनरुद्धार योजना से हटने की इच्छा जताई है। कंपनियों के समूह के एक अधिकारी ने PTI भाषा से कहा, BEML ने समूह से हटने की इच्छा जताई है। इसका कारण सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव है। हालांकि अभी इस बारे में कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि समूह ने 2010 में अदालत के निर्देश पर हुई नीलामी में कर्ज में डूबी कंपनी को 100 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क सोशल मीडिया मंच पर गलत सूचनाओं से मुकाबला करने वाली टीमों में और कटौती कर रहे हैं। पिछले सप्ताह के अंत में सोशल मीडिया मंच के लिए आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे मॉडरेटर को पता चला कि अब उनकी नौकरी नहीं रह गई है। ट्विटर और अन्य बड़े सोशल मीडिया मंच नफरत फैलाने वाली चीज़ों पर नियंत्रण और नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के खिलाफ नियमों के प्रवर्तन के लिए काफ़ी हद तक उन ठेकेदारों पर निर्भर है जिनको उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। ट्विटर ने अब इस तरह की सामग्री की निगरानी करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। इससे पहले 4 नवंबर को ट्विटर द्वारा अपने स्थायी कर्मचारियों को ईमेल भेजकर उनको बाहर करने की सूचना दी गई थी। अब मस्क ने ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX के दिवालिया होने से परमार्थकारियों की दुनिया को भी झटका लगा है। FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन फ्राइड ने परमार्थ अभियान के लिए काफ़ी दान दिया है। FTX फाउंडेशन का कहना है कि उसने विभिन्न परमार्थकारियों के लिए $19 करोड़ की मदद दी है। इससे पहले इसी साल फाउंडेशन के फ्यूचर फंड ने $10 करोड़ का दान देने की घोषणा की थी। फंड ने 2022 में परमार्थ कार्यों के लिए $1 अरब की मदद देने की उम्मीद जताई थी। FTX के दिवालिया होने की वजह से अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कई गैर लाभकारी समूह जिन्हें बैंकमैन से संबंधित समूह से पहले ही मदद का पैसा मिल चुका है उनको लेकर भी अब संदेह जताया जा रहा है। महाराष्ट्र की कंपनी TCR इंजीनियरिंग को रक्षा और गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में कई नई परियोजनाएं मिली हैं। कंपनी के वैश्विक अध्यक्ष रोहित बाफना ने ये जानकारी दी। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, पूंजीगत सामान, इस्पात, सीमेंट, परमाणु ऊर्जा और पूंजीगत सामान जैसे उद्योगों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले औद्योगिक उपकरणों का गुणवत्ता परीक्षण करती है। बाफना ने कहा कि TCR इंजीनियरिंग पहले से ही देश में 84 विभिन्न साइटों पर गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कंपनी को हाल ही में गैस पाइपलाइन और रक्षा के क्षेत्र में कई नई परियोजनाएँ मिली हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केंद्र DRMR ने उच्चतम न्यायालय में जैव प्रौद्योगिकी नियामक GEAC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर किए जाने से कुछ दिन पहले ही पैदावार के मूल्यांकन के मकसद से खेत परीक्षण के 6 प्लॉटों में अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों के संकर DMH 11 की बुआई कर दी थी। GEAC ने DMH 11 को पर्यावरण परीक्षण के लिए जारी करने की अनुमति दी थी, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नियामक संस्था जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने 18 अक्टूबर की अपनी बैठक में ICAR की देखरेख में परीक्षण, प्रदर्शन और बीज उत्पादन के लिए DMH 11 बीज को पर्यावरणीय परीक्षण के लिए जारी करने की सिफारिश की थी। धारा संकर सरसों एक संकर बीज किस्म है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है। इसको पर्यावरणीय परीक्षण के लिए जारी करने के फैसले ने वैज्ञानिकों, किसानों और कार्यकर्ताओं के बीच काफी नाराजगी है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।